अब इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो सफ़र है, दावती सफ़र, इल्मी सफ़र। अगर अभी देखें तो हमने दावती नुक्ते नज़र से दूसरे मज़ाहिब का जायज़ा ले लिया। खुलासा क्या था कि बाकी अदियान ख़ास जगहों के लिए हैं, ख़ास वक्तों के लिए थे, लेकिन इस्लाम और उसकी आलमगीरियत देखी। आज का जो मेन टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्या था, इस्लाम और उसकी आलमगीर तबलीग, यानी इस्लाम ही वो सोच, वही लाइफस्टाइल है जिसके पास आज की दुनिया के सारे मसाइल का हल है। बिलीव मी, इस्लाम यूनिवर्सल रिलीजन है, इसके पास सारी दुनिया की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल नीड्स को फुलफिल करने का पूरा एजेंडा मौजूद है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट पैकेज। जैसे आप एक प्लेटर लेते हैं ना, आप कहते हैं ये प्लेटर आएगा तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, और उससे आप भी खा लेते हैं, आपके साथ जो आपके मेहमान हैं या साथी हैं वो खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ड्रिंक भी होता है, उसमें कुछ साइड्स भी होती हैं, वट एवर, ठीक है। इसके बरक्स अगर आप कोई एक चीज़ ऑर्डर करें, सिर्फ मिसाल है ब्रेड कर लें, तो सालन नहीं है, सिर्फ सालन करेंगे तो ब्रेड की ज़रूरत होगी, है ना, ये हम सब जानते हैं। इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट प्लेटर। आज के दौर के चाहे होमोसेक्सुअलिटी के इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कॉलोनीज़म का इशू है, बड़े बड़े लफ्ज़ हैं जो मेरे आपके लिए बिल्कुल भी काबिल अमल नहीं है, लेकिन जो दुनिया के मौजूदा मसाइल हैं उन सब का हल इस्लाम में, और इस्लाम हमारे पास है। और हमसे मैं पे आइए, मेरे पास कंप्लीट पैकेज है ज़िंदगी का। करना क्या है अभी तक जो बात है उसका खुलासा, खुद भी उसको इंजॉय कीजिए, इंजॉय योर इस्लाम। ये भी एक जेम है, इंजॉय द प्लेटर ऑफ इस्लाम। इसके लिए हम मुसलमानों को सबसे पहले अपनी ज़ात, कू अनफुसकुम, अपनी ज़ात को बचाइए, फिर उसके बाद अपने घर, क्लोज होम, यानी हस्बैंड और बच्चे, और घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनको, उसके बाद हमें अपने गली मोहल्ले के इर्द गिर्द के लोग, फ्रेंडशिप सर्कल, और फिर उसके बाद जो हमारे कह लीजिए कि फैमिली है, कजन्स, और हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन तक पहुँचाना, और होते होते ये दायराकार कितना बड़ा होता जाएगा, पूरी दुनिया तक। आपको मुझे अल्लाह नहीं पूछेगा अगर ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम ना आया, आपसे मुझे अल्लाह नहीं पूछेगा अगर न्यूजीलैंड में इस्लाम ना आया, बिलीव मी आपसे मुझसे नहीं पूछेगा, अनलेस के हमारे मीन्स और रिसोर्सेज वहाँ तक पहुँच जाएँ। बट आपसे और मुझसे अल्लाह ताला ये ज़रूर पूछेगा कि तुम्हारी अपनी ज़ात पे कितना इस्लाम था, तुम खुद कितना अमल करती थी, इतना लोगों को पढ़ाती थी, तुम खुद क्या करती थी, फिर तुम्हारे घर में हर वो बंदा जो तुम्हारी कंस्टडी में था, जिसमें तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वाले लोग, और इवन हस्बैंड, हस्बैंड के लफ्ज़ के साथ बहुत सारी औरतें डिफेंसिव हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक औरत हूँ, आप लोग भी औरतें हैं। मैं आपको एक पूरे यकीन के साथ कहूँगी, औरत के पास बहुत कुव्वत है। अल्लाह ने मर्द को औरत के हाथों में दे दिया। आप देखिए कि हर मर्द जिंदगी के किसी दौर में भी एक औरत के हाथों से पल के बड़ा होता है ना, माँ। फिर आप देखिए बहन की ताकत, मूसा और उनकी बहन की सूरत में हमें कुरान पाक में दिखती है। फिर इसी तरह से बीवी, ख़ास तौर पे, कोई माने ना माने, मैं खुद भी इसको मानूँ ना मानूँ, बट इट्स फैक्ट, शौहर अपनी बीवी के हाथों में होते हैं। मान ले आप, आज मान लीजिए इस बात को। सिर्फ करना क्या है कि औरत अकलमंद हो, हिकमत वाली हो। क्या आप और मैं अपने हस्बैंड को ओवरलुक करके जन्नत में जाएंगे? नहीं। ये कुरान ऐसी किताब नहीं जिसको आपके सिलेक्ट फ्यू, कुछ लोग इसको सिलेक्ट कर लें, दैट्स ओके, नो। ये किताब आपके मेरे पूरे घर में, घर वालों में, इर्द गिर्द सब के अंदर जाएगी। अल्लाह ने आपको मुझे किसी ऐसे काम का हुक्म नहीं दिया जो हम कर नहीं सकते। वो उस्ताद तो बहुत ना समझ करार देगा जो स्टूडेंट से उस चीज़ का मुतालबा करे जो पढ़ाया ही नहीं। स्टूडेंट कर ही नहीं सकते और उनको कह दे कल जाके पूरा कुरान लिख कर ले आओ, लोग कुछ नहीं कहेंगे मुंह से, दिल में कहेंगे इतनी समझ कोई नहीं है इनको, नामुमकिन होमवर्क दे दिया हमें। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने आपको मुझे कोई नामुमकिन चीज़ नहीं दी है। करना क्या है? सब्र। आज के दौर की औरत का सब्र इल्मी सब्र है। आप अपने घर वालों से ताल्लुकात अच्छे रखें, आप उनको प्यार मोहब्बत से बताइए, आप इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आएंगी। हमारे साथ क्या हुआ, 1947 अपने ऊपर ले लेते हैं हम हिंदुस्तान के लोग, हमने जिस्मानी आज़ादी ले ली, इसी तरह मुल्क दुनिया के आज़ाद होते गए, ज़हनी आज़ादी नहीं मिली। आज हमारी नस्लें, हमारे खुद बड़े भी रस्मों रिवाज के मुक़य्यद हैं, असीरु शहवात भी हैं और असीरु रसूमात भी हैं। आज हम अपने माशरे के ट्रेंड्स के गुलाम हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उनका ख्याल है, ये है वो। हर दौर के मुख्तलिफ तकाजे होते हैं। जैसे आप देखिए, इमाम अहमद थे ना, उनके दौर में कुरान मखलूक है, ये एक बहुत बिग इशू था। इस पे कोड़े पड़ते थे और कहते हैं किसी पहाड़ को पढ़ते या हाथी को पढ़ते तो वो ढह जाता, लेकिन इमाम अहमद उस पे कायम रहे। आज आप और मैं ये बात करें कुरान मखलूक है कि नहीं है, तो आप कहेंगे ये क्या इशू है। आज के दौर का मुसलमान, आप और मैं क्या करें? जो भी बात थी, नंबर एक, अशेम्ड मुस्लिम होने का एहसास ख़त्म करें। एहसास कमतरी का एहसास अपने अपने बच्चों, घरों से निकाल दीजिए। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलिए, ये आज का जिहाद है। तबरुजुल जाहिलियत को उतार कर फेंक दीजिए। सुन्नत के कल्चर को रिवाज देना है, तभी याद रखिए बेहयाई ख़त्म होगी। हमारे बच्चे नबी सल्लम से एक दिन में मोहब्बत नहीं करने लगेंगे। एक एक सुन्नत बताते जाइए, बचपन से नहीं बताई तो अभी सही, और आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलिए, क्योंकि वक्त के तकाजे हैं। आज उनके जहनों पे क्या है? वैलेंटाइन। आज से 10 साल पीछे भी लफ्ज़ वैलेंटाइन मैंने तो नहीं था सुना हुआ, 6-7 साल पहले सुना है। आपकी नानी दादी ने आज से 50 साल पहले बर्थडे नहीं थी मनाई। आज आप बर्थडे ना मनाएं तो कहते हैं ये किड्स के राइट्स के खिलाफ है ना। आज के दौर में उन बच्चों और सारे इर्द गिर्द वालों के जहनों पे ये बड़ी बड़ी चीजें टकरा रही हैं। आपने मैंने क्या करना है? एकदम नहीं, आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता उनके जहनों से ये गुलामी निकालनी है। देखिए, लोग कहते हैं बर्थडे मना सकते हैं कि नहीं, बहुत सारे पूछते हैं, अब तो कम पूछते हैं, पर मैं कहती हूँ मसला बर्थडे मनाने का नहीं है। अल्लाह के बंदो, कोई कहता था ये बिदअत है, ये रस्म, बर्थडे इज नॉट अ बिग इशू। आपकी नीयत क्या है, बट इसमें मरूबियत है, दिस इज नॉट इस्लामिक कल्चर। तो हम क्यों उनके नक्शे कदम पर चलें, हम क्यों उनके तौर तरीकों को अपनाएं? क्यों? क्योंकि हमारी नस्लों को हमने बेकारियत में डाल दिया। अरे, रिसालत नहीं खत्म हुआ। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वाली जो बात शुरू हुई थी, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली की, अभी काम बाकी है। हम नबी नहीं बनेंगे पर नबियों का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा इसके लिए सहाबाए कराम ने जो कुछ किया था वो मुझे आपको करना है। नबी सल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा था, उस मौके पे आपने पैगाम दिया। उस वक्त मुसलमानों के दुनिया में झंडे गड़ने शुरू हो चुके थे, अभी पूरी फतुहात तो हुई भी नहीं थी, वो तो हुई जाके हजरत उमर के दौर में। लेकिन मुसलमान जहनी तौर पे इस ख्याल में आ गए थे कि इस्लाम एक काबिले इज्जत मजहब है। होते 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 आज क्या हुआ कि हम पूरी दुनिया से बातें सुनते हैं। तो इस वक्त अगर एक मोमिना आप एक काफी हैं, यू आर मोर देन एनफ टू चेंज योर होम, फैमिली और खानदान। सिर्फ आपने अभी आगे हिकमतें सीखनी है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अपने लिए अल्लाह से मन्नत मान ले, मैंने अपने मियाँ के बगैर असाबिकुन अलव्वलून में भी नहीं दाखिल होना। ये नहीं कहते अल्लाह चलो मियाँ को जन्नत के दरवाजे पर डाल देना, मैं ऊपर चली जाऊंगी, ये भी नहीं करना। मेरे बच्चे को अल्लाह जन्नत का कुछ चौकीदारी बना देना, नहीं। अल्लाह, मैंने अपने बच्चे को अरशे बरी पे देखना है, मैंने फिर दौस में देखना है। मेक योर बिग गोल, और आज जाके घर वालों को कह दे मैंने अब आपके लिए गोल बना लिया, आई हैव सेलेक्टेड द प्लेस ऑफ जन्ना फॉर यू। ठीक है, इसके लिए तरीकाकार क्या है? जो घर के अंदर अपना अखलाक किरदार, ये आपको मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, अपने अंदर से सेंसिटिविटी ख़त्म करनी पड़ेगी, हसासियत, नाजुक मिजाज। नाजुक मिजाज लोगों की इस्लाम को कतन ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत तो है पार्लर्स को और हेल्थ सेंटर्स को। कमर नापिए, स्किन की टोन चेक कीजिए, बालों की नोकें देखिए, नाखूनों को ट्रिम कराइए। इस्लाम को ज़रूरत है स्ट्रांग लोगों की। देखिए, इमारत बनानी है हमने इस्लाम की, कोई शो पीस तो नहीं है, हम शोकेस तो नहीं बनाने। इंसान तैयार कीजिए, और उसके लिए अपने घरों को तो लेना है, लेकिन जो सहाबा का तरीका था, जो आज मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी, वो है सफ़र। नबी सल्लम की इस बात पे इतना अमल हुआ कि लोगों ने सफ़र करने शुरू कर दिए। ईवन नबी सल्लम के दुनिया से रुख्सत होते ही मदीना लोगों से खाली होता हुआ दिखने लगा। बल्लिगन्नी वलो आया पे अमल हमने और रंग में सोचा, उन्होंने कुछ और किया। हर सहाबी जिस तरफ उसका रुख लगा वो मदीना से निकला, वरना क्या होता, मदीना ही मुसलमानों से भर जाता और फिर रोम, फारस, ईरान, इराक, बगदाद, 100 कुछ मुल्क है इस वक्त, ये सब सहाबा के दौर से ही फतह होने शुरू हो गए थे। तो सफ़र की इल्म में बहुत अहमियत है, सफ़र के बगैर बात नहीं होती। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि सफ़र की जो मुख्तलिफ कैफियात होती हैं वो इस्लाम कैसे लाती हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द दावत देना शुरू कर देंगे, अल्लाह सुबहान तआला आपसे दूर भी काम लेगा। अब सवाल पैदा होता है कि जो कोशिशें की गई और होती हैं और अल्लाह ने सहाबा से काम लिया, अगर सहाबा कराम इधर उधर ना फैलते तो इस्लाम नहीं फैलना था। आप एक बात याद रखें, सच्चा मोमिन एक बीज होता है, या जैसे वो जिससे दही जमाते हैं, जाग लगाना, खमीर होता है। जहां वो एक छोटी सी बूंद डाल दी जाएगी ना, वहां खमीर हो जाएगा। हम तो इतने सालों से बैठे हुए, किसी का हमने बाल का बीका नहीं किया, होते उमर फारूक वेम्बली में। जरा सोचिए, अबू बकर गुजरते इधर की रोडों पे से, गलियों से, कितनों का कूड़ा साफ कर देते। हम अपने आप में रहते, निकली अपने शेल से। आज वो मुसलमान जो अपने नट शेल और अपनी जात में खोए ना, वो मुजरिम है, माजरत के साथ मुजरिम, जुर्म है आज के दौर का, अपने खौल में खोए हुए। और याद रखिए अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह कहता है अगर तुम्हारे अंदर खैर है ना और तुम कर कुछ नहीं रहे इस्लाम के लिए, तो फिर मैं तुम्हें मुश्किलों में डालूंगा, फिर तुम्हें तुम्हारी पड़ी रहेगी। एक मुकदमे से निकलोगे, कोई दूसरा कर देगा, भाई बहनों के जायदादों के मसले शुरू हो जाएंगे, वो कोई तुम्हारी पाकिस्तान में जमीन ले जाएगा, फिर तुम पाकिस्तान जाओगे, चार मार रहोगे, मुकदमा करोगे, कहीं अल्लाह अल्लाह करके वो निकलेगी तो इधर खबर मिल जाएगी इधर कोई मसला आ गया। अल्लाह उस बंदे को अपने जाती दुखों गमों में डाले रखता है जिसको इस्लाम का दुख नहीं है। ये मैं बिल्कुल जज्बाती बात नहीं कर रही, पूरे यकीन के साथ कर रही, क्योंकि अल्लाह ने आपको पाक करना है। आफ्टर ऑल अल्लाह वॉन्ट्स यू टू सी इन जन्ना। आप इस्लाम के लिए कुछ करते नहीं दिख रहे क्योंकि आप कहते हैं मैं बीमार बहुत हूँ, मिसाल है, या मसरूफ बहुत हूँ, या मेरे पे जिम्मेदारियां बहुत, ये दो तीन चीजें, या आई वर्क, ये तीन चार इश्यूज है ना। देखिए ये आपके पर्सनल इश्यूज हैं, मतलब आप जॉब करती हैं, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू दावा। आप डॉक्टर हैं, आप मुझे बताइए, आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं तो आपको बीच में लंच ब्रेक तो मिलती होगी ना। जब यहां हम एक दूसरे को सर्व करते हैं, आप वहां करके इस्लाम की कीमत लीजिए। तो दावती सफर जो होते हैं ना सहाबा के, ही इस्लाम का मिजाज था। दावती सफर किस तरीके से, क्या हालात होते हैं, इस्लाम हमें आपको सफर करने की जो दावत देता है उसकी वजूहात क्या है, क्योंकि इस्लाम ने पूरी दुनिया में जो फैलना है, आज का लफ्ज क्या है, लियुज़हिरहु। अब आपने इस्लाम को फैलाना है तो कैसे करेंगे, मुख्तलिफ तरीके से। एक जेम लिखिएगा, मुसलमान इस दुनिया में रूह की तरह है, जिस्म में रूह निकल जाती है ना तो उस जिस्म को मट्टी में दफन कराते हैं हम, ऐसे ही है ना, बिल्कुल इसी तरह से जब मुसलमान इस दुनिया में चलते फिरते घूमते हैं तो दुनिया में रूह रहती है। हमें रंग, नस्ल, वतन, मुल्क, कौमियत का पाबंद नहीं रखा, हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं, इवन मक्का मदीना भी हमारी बाउंड्री नहीं है। करना क्या है, हमने हर मुमकिन तरीके से दुनिया में घूमते फिरते अल्लाह ताला के दीन को प्रमोट करना है। मसलन सबसे पहला तालीमी सफर, आप देखिए कि सफर में सबसे कीमती सफर वो है जो आप इल्म हासिल करने के लिए करते हैं। मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, इल्म किसी की मीरास नहीं है, किसी कबीले की जारादारी इस पे नहीं है, मिनोपली नहीं है। सहाबा कराम के जमाने में ही इल्म सारे खितों में मुंतशिर हो चुका था। इल्म के हसूल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना नोन था। मैं एक वाक्या सुन रही थी, एक बहुत बड़े अपने दौर के इमाम थे, गालिबन इमाम मालिक की मिसाल ले लेते हैं। बहुत दूर से उनके शागिर्द उनके पास आए, 40 दिन उनके पास रहे। 40वें दिन उठ के शागिर्द शिकवा करता है, कहता है या उस्ताद, मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं 40 दिन से आपके पास हूँ और आपने मुझे सिर्फ 30 हदीसें लिखाई हैं। सुनिएगा जरा उनका गिला कि 40 दिन में सिर्फ 30 हदीसें लिखाई हैं, आपने तो मुझे बड़ा थोड़ा इलम दिया। तो उन्होंने फिर उसको कहा कि ए 30 हदीसों को थोड़ा समझने वाले, 40 दिन में तुझे 30 हदीसें मिल गई और तू थोड़ी समझता है, मुझे तो वो जाबिर याद आ रहा है कि जिसने एक ऊंट खरीद के मदीना से शाम का सफर किया था सिर्फ एक हदीस लेने के लिए। तू ना शुक्र है, मैंने तुझे 30 मोती दे दिया और तू कह रहा है ये कुछ भी नहीं। ये हमारा मिजाज था। कुरान इस पे क्या कहता है, सूरत तौबा, फलाउ लनफर मिन कुल्ली फिरकते मिनहुम, हर फिरके में से एक गिरोह ने इस गरज से सफर क्यों नहीं किया कि वो दीन में तफक्को हासिल करें, फिर जब इल्म से फारिग हो जाएं तो वापस आएं और अपनी कौम को अल्लाह के अहकामात से डराएं ताकि वो बुरे कामों से बचें। इल्म हासिल करना मुसलमानों की शान थी। हमारे असलाफ दुनिया में इल्म लेने के लिए कैसे भागते थे, ये एक अपनी जगह मुस्तकिल टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है असलाफ के इल्मी असफार की दास्तान दिलनवाज। इल्म के लिए सफ़र करने की क्या खूबसूरत सुन्नत थी। ये लिखते हैं कि उलूम व फ़नून का बेश बहा ख़जाना हम तक यूं ही नहीं पहुंचा, इनको जमा करने में हमारे असलाफ इंसेस्टर्स, हमारे असलाफ ने बेपनाह सब्र, इस्तकामत, जानकाही और दिल सोजी का सबूत दिया। राह तलब की सोबतों मुशक्कतों को झीला और तलब इल्म में ख़ानदान तो क्या वतन को तरक किया। बरसों, एक तो दिन की बात नहीं, 10 दिन का कोर्स नहीं था, बरसों दूर दर बदर की खाक छानते रहे और सरमाया इल्मो फन जमा करते रहे। आज के तलबा अजीज और आमो खास मुसलमानों के लिए नफूस कुदसिया की दास्तान दिल नवाज बायस फ़ख्रो नाज और अजमो हौसला को जमा करने का सबब होगी। बहुत सारे वाक़ियात को जमा किया तो एक इल्मी गुलदस्ता बना। ये ज़ियाउल्लाह दीन कासमी की तहरीर है, बहुत प्यारी है। एक शख्स है हाफिज़ हदीस थे, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन वंदा, इनके इल्मी असफ़ार, इनका लाइफ स्पैन था 310 हिजरी से 395। मैं गिन रही थी तो गोया कि इनको 85 ईयर्स की ज़िंदगी अल्लाह ने दी। पहले लोगों की उम्रें भी इसीलिए लंबी थी कि गम नहीं थे, एक ही गम था। इनके बारे में लिखता है कि सक्का रावियों में से हैं, तफसीर, हदीस, फिक, तारीख, उलूम अस्मा और इजाल के माहरीन में शुमार किए जाते हैं। इनकी जलालत शान और रिफ़त मकान का एतराफ़ उलूम तफसीर व हदीस के शयूख व हुफ्फाज़ ने किया। इल्मी तबके में हाफिज़ इब्ने मुंदा के नाम से मशहूर व मारूफ़ हैं। दुनिया की सियाहत, उलूम व फ़नून की तहसील में मुस्तकिल सरगर्दा रहने की वजह से इनको लोग कहते थे जवालतुल अर्ध, जाले लगते हैं ना, उसको जवाला कहते हैं। इस तरीके से इल्म लेने के लिए भागते थे कि लोगों ने कहा तुम ज़मीन के जाले हो। कसरत तसनीफ़ और तालीफ़ात में अपना इम्तियाजी मुकाम रखते हैं। अहादीस की किताबों में महफूज रखने में नुमाया हैसियत के हामिल है। हज़ारों सफ़ात खुद अपने हाथ से लिखे। जिन शयूख की खिदमत में समात हदीस के लिए हाजिर होते इनकी रिवायत करदा बातों को लिख लेते। खुद इनका कहना है कि मैंने अपने उस्तादों की रिवायात को सुनकर 5,000 सन तहरीर किए। क्या मतलब? एक सन कहते हैं कागज़ के 10 बड़े जुज, यानी अपने उस्तादों से जो मैंने सीखा आप कह लीजिए कि उस पे 10 बड़े सफ़ थे, तो उसको अगर 5,000 से करेंगे तो 10 को 5 से ज़रब दे लीजिए, कितने बने? 5,000 ज़रब 10, इतने सफ़े लिखे। जब अपने तवील इल्मी सफ़र से वापस आए तो इनके साथ किताबों का 40 का बंडल था। कहते हैं मैंने मशरिक़ व मगरिब का 2 मरतबा चक्कर लगाया, यानी अपने साथ सफ़र में जो इनके पास सबसे भारी चीज़ थी वो किताबें थी। हाफिज़ इब्ने मुंदा अपने वक्त के तमाम शोहरे आफाक, बड़े बड़े इमाम और मुहद्दसीन और मुज्तहीन से मुलाकात का शर्फ हासिल किया और उनके जो इल्म व फ़नून थे उससे फ़ायदा हासिल किया। जुरा कुशी कहते हैं घूंट भरे, इल्म के घूंट भरे इन्होंने। इल्म की तलब की राह में निकले, हर किस्म की तकलीफ़ों का सब्र और इस्तकामत के साथ सामना किया। भूख और प्याज और सोबत और मशक्क़त बर्दाश्त की, मगर इल्म हासिल करने का सौदा सर में समाया था। ना रात को रात जाना, ना दिन को दिन जाना, बस जुनून इल्म था जो सहराओं में चलने पर आमादा करता था। जिस इलाके या मुल्क में किसी उस्ताद का चश्मे फैज़ जारी होता वहाँ सैराब होने के लिए पहुँच जाते। मुहक्किकीन ने इनके उस्तादों और शयूख की तादाद 1,700 से ज़ायद बताई है। गौर कीजिए, ये उस वक्त की बात है जब आमदोरफ्त के वसाइल महदूद थे, जंगल और बियाबान की भरमार थी, एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र जान जोखों में डालना था। फिर आज की तरह से मदारिस और जामियात का जाल भी नहीं बिछा था, यानी कोई इतने खूबसूरत इदारे भी नहीं होते थे। मुहद्दिसीन और उलमाए कराम ख़ास तौर पर अपने शहरों और कस्बात की मस्जिद और अपनी क्याम गाहों में दर्स देते थे। रहने खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होता था, लेकिन तालिबीन और शायकीन का हजूम परवानावार उलूम व फ़नून की इन शमों पर टूटता था। सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में तलबा हाजिर दरस होते, इन्हीं में इब्ने मंदा जैसे गरीबुल वतन तलबा भी शामिल थे। वह अपने खाने पीने का इंतज़ाम खुद करते थे, लोग नहीं पका कर भेजते थे उनको। इल्म इतनी बड़ी चीज़ थी हमारे असलाफ की। देखिए हम तरीके इनकलाब पढ़ रहे हैं ना, इल्म से आया था। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे असलाफ की तब्दीली और दूसरों को देने में थी वो इल्म था। आज मैंने अपने इल्म देना है, तलवारें नहीं देनी, कलम देने हैं, तीर नहीं पकड़ाने, कापियां पकड़ानी है। वजह क्या है कि आज के दौर में दुनिया इल्म से इतनी जान छुड़ाएगी कि अल्लाह की बना। और इनकी जिंदगी में जो सफ़र थे पढ़ के हैरत होती है, ना ट्रेनें, ना जहाज, ना बसें, ना गाड़ियाँ। याद रखिए शौक लेकर आता है, इल्म रास्ते आसान करता है जन्नत के। जो इल्म के रास्ते पे चलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान करता है। तो आप अगर यहाँ से उठकर ज़रा सा दूर से आए तो अपने पर तरस मत खाइए, फ़ायदा आपको होगा। देखिए दुनिया भी सफ़र कितना करते हैं बच्चे, अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, अपने मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में जाते हैं। कह लीजिए कि नॉर्वे का मेरा ले हर चौथा बच्चा नॉर्वे से बाहर की यूनिवर्सिटी जाता है। कई वजूहत होंगी लेकिन जाते हैं, इट्स नोन। लड़कियां जाती हैं, लड़के जाते हैं, अलग रहते हैं, वहाँ सब होता है, ये नोन है। आप अपने बच्चे से कहें जाओ मस्जिद में जाकर जरा दर सुनो, कहेंगे अम्मी नहीं मैं कैसे जाऊँ, गाड़ी नहीं। सिर्फ समझा रही हूँ कि हमारा जहन इल्म दो जहन होना चाहिए, और उसके अंदर भी फिर इल्म वो जो इल्म नाफे हो और जिससे आपके मेरे अंदर ईमान की हरारत पैदा हो जाए। और इस तरीके से ये चीज़ें आपको मुझे देखना है। अबुल हसन कहते हैं अपने उस्ताद को फरमाते हुए सुना, जबकि वो बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे, उन्होंने अपने इल्मी सफ़रों के ज़माने में 1 लाख हदीसें याद कर ली थी। आपको कितनी याद है, मुझे कितनी याद है। फिर हाफसा इतना कमज़ोर हो गया कि एक हदीस याद करना मुश्किल हो गया। कहने लगे आज मेरी बिनाई जायल हो गई है, शायद ये मेरी माँ की कसरत से रोने की सज़ा है। मैं अपने इल्मी सफ़रों के बायस माँ की खिदमत में ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था, जबकि वालदा की ख्वाहिश रहती थी कि यहाँ इनके पास रहा करूँ। मुझे अफसोस होता है कि इनकी खिदमत का हक अदा ना कर सका, और ये कोताही उलूमे हदीस की तलब के शौक़ और जुनून के बायस हुई। यदि उनको अपने घर से दूर होना पड़ता था इल्म के शौक में। और मुहद्दिस कतान तकवा और सलाह के पैकर थे। एक तो मुसलसल सफर थे जिसमें फर्ज रोजा भी तरक कर सकते थे और क्याम भी पीछे कर सकते थे, लेकिन मुसलसल 30 साल तक रोजे में रहे, सिर्फ नमक रोटी से इफ्तार करते। जाहिद और कनात के नमूने सब्र और इस्तकामत के साथ हर तकलीफ का अल्लाह के हुक्म से मुकाबला करते थे। आखिरी जुमले पढ़ देती हूँ। आज जबकि हर तरफ मदारिस इस्लामिया का जाल बिछा हुआ है, किताबों की भरमार है, हर फन की किताबें मुयस्सर हैं, खाने पीने का मुफ्त निज़ाम है, कौन मर्दे मुजाहिद है जो हदीस रसूल को हिफ्ज़ करने का शौक़ रखता है। कहने को तो शेहुल हदीस और शेहुल जामिया के मनसब पर फायज़ हज़ारों उलमाए कराम पाए जाते हैं, मगर शायद और शायद किसी को 1,000 हदीसें भी याद होंगी, फिर इस पर रावियों के हालात की पूरी तफसीर भी असबर हो। वो नवादराते ज़माना गुजर गए जिनके वजूद से उम्मते मुस्लिमा बा इज्जत और बावकार थी। ये थे वो पिलर्स जिन पे उम्मत की इज्जत थी, वो यकताए रोजगार असलाफ अब सफाते तारीख की जीनत हैं। हमको ये भी तौफीक नहीं होती कि इनकी सवाने हयात से ही दिल को गरमा लें। कद खलत गुजर गई तिलक सुनून वहलुहा फकन्नहा कन्नमहलाम, वो माहो साल और इसके बा कमाल लोग गुजर गए। अब ऐसा महसूस होता है कि वहदे जरी और एक असलाफ एक ख्वाब थे। आज हमारी प्रायोरिटीज बदली हुई हैं, तब्दीली आएगी तो इल्म के रास्ते से आएगी वरना नहीं आएगी। सर फोड़िए जो मर्जी कीजिए, खुद भी इस दीन के असल सोर्स को लेकर चलेंगे और उसको अच्छे तरीके से लेंगे और अपनी नस्लों को, यही तब्दीली का आगाज है। अखलाकी सफर क्या होते हैं, इन नफी खल की समावाती वल अर्दी वख्तिलाफ लैली वन नहार, गौर व फिक्र किया करें, अपने बच्चों को भी लें खुद भी करें। कैसे, पिछली कौमों के हालात को देखिए। अल्लाह ताला कहते हैं अफलम यसीरु फिल अर्दी, क्या उन्होंने सैर नहीं की जमीन में। फतकून लहुम कुलूबन, होते उनके दिल के वो करते याकिलून अभी ही, गौर व फिक्र उसके साथ। अब आज़ान यस्मऊ नबिहार, उनके ऐसे कान होते कि वो सुनते। तो दूसरा काम जो आपने सफ़र का करना है, वो पैदल नहीं चल सकते ना, गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। फिर आप देखिए तीसरी सफ़र की किस्म है तबलीगी सफ़र। पहले ये जुमला बड़े देर से बोलूँगी, जो इल्म लेने के लिए सफ़र नहीं कर सकता वो इल्म देने के लिए भी सफ़र नहीं करेगा, जो तालीम के लिए सफ़र नहीं आज कर सकता वो तबलीग के लिए भी कल सफ़र नहीं करेगा, जो आज कुर्बानी नहीं दे सकता इल्म लेने के लिए वो कल देने के लिए भी नहीं करेगा। आज ये इशू बन गए, आज लेने में हमें इतने मसले हैं तो कल देने में कितने होंगे, हालांकि लेने में तो लालच होता है अपना। तबलीग के लिए बंदा पैदल भी चले ना तो सफरे ताइफ को याद कर ले। मूसा मदियन से मिस्र का सफर करके फिरौन को राह दिखाने के लिए आए थे ना, इज़हबिला फिरौन इन्नहु तगा, फिरौन की तरफ जा वो तागी हो गया। तो नबियों ने सफर किए, आप देखिए हजरत इब्राहिम हिजाज से उठे थे और इराक पहुंचकर नमरूद को जाकर नसीहत करके आते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, आपके तबलीगी सफर और वो सब कुछ मौजूद है। हाँ एक सफर मारूफ है हमारे यहाँ, इबादत का सफर। अपने घर से उठकर मस्जिद के लिए अगर पैदल जाते हैं आपके हस्बैंड और बेटे, या गाड़ी में जाते हैं, उनको कहिए मुबारक हो, ये आपकी इबादत का सफर है, अजर मिलेगा। फिर इसी तरह हज और उमरे के लिए जाना हमारे लिए बहुत मारूफ है, अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी बात है। इबादत के लिए भी गाड़ियाँ निकले, हमारी गाड़ी हर चीज़ के लिए निकलेगी इल्ला माशाल्लाह। जुमे के लिए ही निकल जाए तो बड़ी बात है। बच्चों को रग़बत दिलाएं कि इन चीज़ों का हक अदा कीजिए। फिर एक पांचवा सफ़र है जिहाद का सफ़र। ये कलम है तुल्ला को बुलंद करने की एक आखिरी कोशिश होती है। सहाबा किराम ने ये भी सारे सफ़र किए थे। वाइज़ा दरब तुम फिल अर्दी फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाती। सलाते कसर का जो हुक्म था, आपको तो मैदान जंग में उतरा था। क्यों? क्योंकि उस वक़्त जंगों में जाकर भी उनको अपनी जमात की फ़िक्र थी। और एक बात कि या अय्युल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जी मान लकुम, तुम्हें क्या हो गया है? इज़ा क़ीला लकुम अन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, जब तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत दी जाती है। अगला लफ्ज़ आप सबको आता होगा, सूरह तौबा ग़ज़वे तबूक। साकल तुम्हें ललर्दी, तुम ज़मीन के साथ जुड़ जाते हो, भारी हो जाते हैं तुम्हारे कदम। असल बात यह क्या रदी तुम बिल हयात दुनिया, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी प्यारी हो गई। तो याद रखो, फ़मा मताउल हयात दुनिया फ़िल आख़िरत इल्ला क़लील, दुनिया का सौदा आख़िरत में जाकर बड़ा थोड़ा निकलेगा, उस दिन कुछ भी नहीं होगा। और एक सफ़र जो हमारे मर्दों को बहुत अजीज़ है, किसी हद तक आज औरतों को भी, तिजारती सफ़र। आपको देखिए, तिजारत के लिए भी सफ़र जायज़ है। नबी सल्लम ने किया, हज़रत खदीजा का सामान लेकर के मुल्क शाम गए। नबूवत से पहले आपने तिजारत के सफ़र किए थे। ये सारे सफ़र भी आपके तबलीगी सफ़र बन जाते हैं, शर्त यह है कि दिल में इस्लाम की मोहब्बत हो। लेकिन हाँ, तिजारत के लिए सफ़र है। आज इस मुल्क में, आज उधर मीटिंग, आज इधर मीटिंग, लेकिन उसमें तबलीग ना करें तो बात बुरी है। किसी ने चाइना का एक मैसेज भेजा था, बहुत बड़ी मुस्लिम मार्केट बिजनेसमैन्स की चाइना जाती है और अपने प्रोडक्ट्स को लेती है। तो चाइनीज़ में वो अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। तो एक शख्स ने लिखा था कि हम उनके लिए हलाल फूड मंगाते हैं और जो भी शराब नहीं देते, वट एवर, बट हमें उस वक्त बहुत हैरत होती है कि हमारे वो मुस्लिम क्लाइंट जो खाने पीने में बहुत पिकी हैं, पिक का गोश्त नहीं खाते, दिस एंड दैट, बट जब वो हमसे भाव तो करते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, क्वालिटी कम कर दो लेकिन हमें चीज़ सस्ती दे दो। तो ये कौन सा इस्लाम है? बात समझ गए? बस यही आज का मैसेज है, इस्लाम को इज्जत दीजिए। कॉल से, फेल से, माल से, वक्त से, इसको लेने के लिए भी आज सफ़र और इसको फैलाने के लिए भी सफ़र। और आज से अपना एक धुन दिमाग में, जिसको कहते हैं ना, एक धुन लग जाए, लियोस खिराहोल दीन कुल्ली ही। देखिए, यही ज़िंदगी का मकसद बना है, जिधर से गुजरे वहाँ हवा चले, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। जुगनू कितना को होता है, इतना को छोटा, अंधेरे में रोशनी है तो वो उससे अच्छा है कि जो कुछ नहीं कर रहा। तो आज से अपनी सोचों में ये चीज़ लगाएं, मैं अपने लाइफ स्टाइल, अपने सरकमस्टांसिस के अंदर रहते हुए कैसे दीन की दाइया बन सकती हूँ, चलते फिरते दाई। बस ज़ाब्ता लोगों को जोड़े, यकीन करें कि लोगों को एक स्टेप से दूसरे पे ले जाएं, दूसरे से तीसरे पे ले जाएं, आपको दुआएं मिलेंगी। तो हमेशा खुले दिल से, वुस्सत कल्बी से दीन लें और दें, आप देखिएगा आपसे अल्लाह इतना काम लेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।